வல்லபா கிரிவரதாரி யசோதனந்தன பிரஜனரஞ்சன யசோதனந்தன பிரஜனரஞ்சன ஹரி யமுனா தீராவனசாரி ஜய ராதமாதவா குஞ்ச விஹாரி ஜய ராதமாதவா குஞ்ச விஹாரி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ராம ரம ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே கிரிதாரி ராதா கிரிதாரி ராதே ஜய ஜெகநாத் ஜய ஜெகநாத் ஜய பாலதேவா ஜய சுபத்ரா ஜய கௌரநிதாய் 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 ஜய கௌரநிதாய் நித்தாய் கௌரஹரி ஹரிபோல் 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 ஜய ஜய பிரபுபா ஸ்ரீல பிரபுபாத் கீ ஜெய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவிம் சரஸ்வதிம் வ்யாசம் ததோ ஜயாமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷ பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகே. ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்த சாத் அத்யாய் சார் ஸ்லோக் சங்கியா 25 और 26. மாவைஷ்ட விபுதா ஸ்ரேஷ்டா மாவைஷ்ட விபுதா ஸ்ரேஷ்டா சர்வேஷாம் பத்ரமஸ்துவஹ சர்வேஷாம் பத்ரமஸ்துவஹ மத்தர்ஷணம் ஹி பூதானாம் மத்தர்ஷணம் ஹி பூதானாம் சர்வஸ்ரேயோபபத்யதே சர்வஸ்ரேயோபபத்யதே. ஞானம் ஞாதமேதஸ்ய துராத்மியம் ஜாதமேதஸ்ய தௌராத்மியம் ஜாதமேதஸ்ய தௌராத்மியம் தைதேயா சதஸ்யயத் தைதேயா சதஸ்யயத் தஸ்ய சாந்திம் கரிஷ்யாமி தஸ்ய சாந்திம் கரிஷ்யாமி காலம் தாவத் பிரதீக்ஷதத் தாவத் காலம் தாவத் பிரதீக்ஷத.
சதஸ்வரா தேதேயா शांति करिष्यामि
तस्य शान्तिं करिष्यामि
कालं तावत् प्रतीक्षता
कालं तावत् प्रतीक्षता
ಭದ್ರಮಸ್ತು ವಹ ದರ್ಶನ ಹಿ ಭೂತಾನಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇಯೋಪಪದ್ಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ மா மத் மைஷ்ட டரோ விபுதா ஸ்ரேஷ்ட ஹே ஸ்ரேஷ்ட விதான் புருஷம் சர்வேஷாம் சபோங்கா பத்ரம் கல்யாண் அஸ்து ஹோவே வா தும்ஹாரா மத்தர்ஷனம் மேரா தர்ஷன் மேரி பிரார்த்தனா யா மேரா ஸ்ரவண் ஹி நிஸ்சந்தேஹ் பூதானாம் சமஸ்த ஜீவோங்கா சர்வஸ்ரேய சமஸ்த கல்யாண் கி உபபத்யதே பிராப்தி கே லியே ஜ்ஞாதம் ஜ்ஞாத் ஏதஸ்ய இஸ்கா தௌராத்மியம் துஷ்கர்ம தைதேய தைதேய உபசதஸ்ய மகானசுர் ஹிரண்யகசிபுகா யத் ஜோ தஸ்ய உஸ்கி சாந்திம் சமாப்தி கரிஷ்யாமி கருங்கா காலம் கால் சமைக்கி தாவத் தப் தப் தக் பரிக்ஷதா பிரதீக்ஷா கரோ அனுவாத ஒரு தாத்பரிய இஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி துவாரா ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி பகவான் கி வாணி இஸ் பிரகார் குஞ்சாயமான் ஹுயி ஹே பரம் வித்வானோ டரோ மத் தும் சப் கா கல்யாண் ஹோ தும் சபி மேரே ஸ்ரவண ததா கீர்த்தன் துவாரா ஏவம் மேரே ஸ்துதியோ சே மேரே பக்த் பனோ க்யோங்கி இன் சப் கா உத்தேஷ் சபி ஜீவோ கா சபி ஜீவோ கோ ஆஷிஷ் தேனா ஹை மே ஹிரண்யகசிபு கே காரியகலாபோன் சே பரிச்சித் ஹூ ஔர் மே உன்னே ஷீக்ர ஹி ரோக் தூங்கா தப் தக் தும் மேரி தைரியபூர்வக் பிரதீக்ஷா கரோ தாத்பரிய கபி கபி லோக் ஈஸ்வர் கே தர்ஷன் கே லிய அத்யதிக் உத்சுக் ரஹதே ஹை இஸ் ஸ்லோக் மே ஆகதா மத் தர்ஷனம் ஷப்த பர் விசார் கர்த்தே ஹுவே யஹ தியான் தேனா ஹோகா கி பகவத் கீதா மே பகவான் கிதே ஹே மத் பக்த்யா மாம் விஜானாதி பக்த்யா மாம் விஜானாதி தூசரே சப்தோ மே பகவான் கோ சமஜ்னே யா உஸ்கா தர்ஷன் கர்னே அத்வா உஸ்கே பாத்தே கர்னே கி சாமர்த்ய மனுஷ கி பக்தி சம்பந்தி பிரகதி பர் நிர்பர் கர்த்தி ஹே பக்தி கே நவ் பிரகார் கே விபின் காரியகலாப் ஹோதே ஹே ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பதசேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் ஆத்மநிவேதனம் சாக்கியம் ஆத்மநிவேதனம் சூக்கி ஏ பக்தி காரிய ஸ்ரேஷ்ட ஹோதே ஹே அதேவ மந்திர் மே அர்ச்ச விக்ரஹ கி பூஜா கர்னே கர்னே உன்கா தர்ஷன் கர்னே ஏவம் உன்கா குணகான் கர்னே மே கோய் அந்தர் நஹி ஹே நிஸ்சந்தேஹ் யே சபி விதான் ஹே உன்கே தர்ஷன் கி விதான் ஹே உன்கே தர்ஷன் கி க்யோங்கி பக்தி में किया गया प्रत्येक कार्य भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क का संबंध जोड़ता है। भगवान की वाणी की गूंज समस्त भक्तों के समक्ष प्रकट हुई, अतः इस वाणी को उच्चारित करने वाले भक्ति यद्यपि अदृश्य था तो भी वे भगवान ने भेंट कर रहे थे या उनका दर्शन कर रहे थे, क्योंकि वे सभी स्तुति कर रहे थे और भगवान की वाणी विद्यमान थी। भौतिक जगत के नियमों से सर्वथा विपरीत भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान का दर्शन करने, उसकी स्तुति करने तथा उसकी दिव्य वाणी सुनने में कोई अंतर नहीं है। अतएव शुद्ध भक्त भगवान की महिमा का गायन करके ही परम प्रसन्न रहते हैं। ऐसे महिमा गान गायन कीर्तन कहलाता है। कीर्तन करना और हरे कृष्ण ध्वनि का श्रवण वास्तविक में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। मनुष्य को इस स्थिति का अनुभव करना चाहिए, तभी वह भगवान के कार्यकलापों की परम प्रकृति को समझ सकेगा। ओम ज्ञात विरांदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिताश्विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल आपने सुना 22 और 23वां श्लोक में कि सारे देवता लोग जो अलग अलग लोकों के पालक है, दिक्पालक है, भगवान की दिशा में वो मुड़ के प्रार्थना करने लगे। जब भगवान की दिशा में प्रार्थना करने लगे तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है, सर्वव्यापी है, सबके हृदय में है, तो हर दिशा में भगवान है, तो भगवान का ऐसा विशेष दिशा कौन सा था? तो उसकी जवाब में आचार्यगण टीका में लिखते हैं कि हिरण्यकशिपु सारे दिशाओं के ऊपर अपना प्रभाव बना के रखा था। समझ लीजिए कि भगवान जिस प्रकार सर्वव्यापी है, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु अपना सामर्थ्य को सर्वव्यापी बना के रखा था। तो उनको कोई और जगह नहीं मिला, वो धाम में गए। भगवान के जो धाम हैं वो दिव्य होने की वजह से उनका प्रभाव, हिरण्यकशिपु का प्रभाव भगवान के धाम में नहीं था, इसलिए वो भगवान के धाम की दिशा में मुड़ के वो सब लोग प्रार्थना करने लगे। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप धाम से भी बहुत दूर हो तो धाम की ओर देख के उसका स्मरण करते हुए आप उनको प्रणाम भी करोगे, धाम का निवास बराबर ही है। जैसे मान लीजिए वृंदावन धाम है, जिस दिशा में वृंदावन धाम है उस दिशा में मुड़ के आप प्रणाम भी करो तो उनको आपको धाम में निवास करने का प्रणाम अर्पण करने का फल प्राप्त होता है। ये जो चीज़ें मुसलमान लोग करते हैं आपने देखा होगा वो ट्रेन में कहीं भी हो वो कभी कभी लोग कंपास भी रखते हैं वो देखते हैं मक्का कौन सी दिशा में है, वो दिशा में बैठ के वो अपना नमाज पढ़ते हैं, प्रणाम वगैरह करते हैं। तो वैसे ही देवता लोग भी किए होंगे। तो जैसे उन्होंने किया तुरंत क्या हुआ, तेषाम, ये 25वां श्लोक है, 24वां श्लोक को हम पढ़ेंगे। तेषाम आविर्भूत वाणी, तुरंत उन सारे लोगों को एक वाणी का आविर्भूत हुआ, यानी उस वाणी सुनाई पड़ा, दिखाई पड़ा। ये वाणी ने क्या कहा उनको, तेषाम आविर्भूत वाणी अरूप मेघ निश्वसना। और अरूप कौन बोल रहा है उनको सुनाई नहीं पड़ रहा था, दिखाई नहीं पड़ रहा था, केवल उनको वाणी सुनाई पड़ा। जिस प्रकार मेघ निश्वसना, ये आवाज़ इतना जोर से था, कैसे आवाज़ था वो, मेघ निश्वसना, जब मेघ का जो गर्जन होता है ऐसा आवाज़ था कि सन्नाधयंती ककुभः साधन साधूनाम अभयंकरी। सो जितने भी देवता लोग एकत्रित थे ये आवाज़ सुन के क्या हुआ, वो एकदम अभय अवस्था को प्राप्त किए। जैसे आवाज़ सुनते ही, वो गर्जना सुनते ही, जैसे कोई बादल का गर्जना सुनता है तो उन्हें डर लगता है, लेकिन ये जितने भी लोग थे, जितने भी देवता थे, वो सब लोग ये अदृश्य व्यक्ति का एक ऐसा भयानक सा आवाज़ सुनते हुए वो अभय अवस्था में पहुँच गए। ये क्यों है, क्योंकि दिव्य आवाज़ है। जैसे ये दिव्य आवाज़ जब प्रकट होता है तो सारे अभक्त होते हैं वो सारे लोग डर जाते हैं, और भक्त हैं वो अभय अवस्था को प्राप्त करते हैं। ये भगवद गीता में वर्णन है कि सारे जितने भी कौरव थे वो डर गए थे, जब पांडवों ने अपना शंख बजाया और कृष्ण और अन्य पांडवों ने जैसे उनका अपना शंख बनाया बजाया, दिव्य शंख पृथक पथ पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, तब सारे जितने भी कौरव थे उनके हृदय में विदधानि हृदयारयत, सगोशो दात्राष्टान हृदयानि विधारयत, उनका हृदय फट गए। लेकिन जब ये कौरव लोग जितना भी हंगामा कर रहे थे तब पांडवों को कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब कृष्ण शंख बजा रहे थे तो पांडवों को बड़ा सा सुख प्राप्त हो रहा था। तो जब घोषणा होता है, प्रघोष होता है भगवान की वाणी का, कीर्तन का, तो सारे जितने भी असुर है वो डर जाते हैं और भक्त लोगों को वो आनंद प्रदान करता है। जय श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की। तो भगवान इस देवता लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुए, वो प्रत्यक्ष उनको दिखाई नहीं पड़ रहे थे, अपनी आँखों के द्वारा दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन केवल आवाज़ उनको सुनने को हुआ। सुनते ही साधु नाम अभयंकरी, भगवान की वाणी जो है साधुओं को अभय प्रदान करता है। तो भक्तों को ये ध्यान में रखना चाहिए, जब हम भगवान की वाणी को श्रवण करते हैं तब हमको अभय अवस्था को हम ग्रहण करते हैं, यानी हम सारे डर से मुक्त हो जाते हैं। इस भौतिक जगत में डर क्यों उत्पन्न होता है, वाई वी आर अफ्रेड। हिरण्यकशिपु इतना भयानक सा कार्य कर रहा था, सारे देवता लोग डर गए। क्यों डर गए, भागवत में वर्णन है कि भयम द्वितीय अभिनिवेश ईशा दबित परितो स्मृति ही। भयम ये क्यों होता है, द्वितीय अभिनिवेश, भगवान के अलावा और कोई चीज़ है, द्वितीय द्वितीय वस्तु, भगवान से भिन्न और कोई वस्तु क्या है, भगवान से अलग कोई चीज़ है ही नहीं, भगवान से अलग कुछ और किस चीज़ है, चीज़ है तो माया है। इस जगत में केवल दो ही वस्तु हैं, एक है माया, एक है भगवान। तो जो भगवान से भिन्न वस्तु है, भयम द्वितीय द्वितीय वस्तु है, वो माया के प्रति अभिनिवेश हो जाता है, उनके प्रति एकदम आकृष्ट हो जाता है, पूरा मन उनके अंदर एंग्रॉस्ड हो जाता है, तो तल्लीन हो जाता है मन, यानी अति आसक्त हो जाता है। तो स्वाभाविक तरीके से आप सबको मालूम है कि देवता लोग कैसे हैं, वह मेटेरियलिस्टिक डिवोटीज हैं, वह आसक्त रहते हैं भौतिक चीज़ों के प्रति, इसलिए उनको डर लगा। जैसे अम्बरीश महाराज श्याम के सामने इतना भयानक सा एक भूत प्रकट हो गया था, इतना भयानक सा भूत प्रकट होने पर भी अम्बरीश महाराज ओ भगवान मुझे रक्षा करो रक्षा करो, वो भागे नहीं। क्यों? वो एकदम अत्यंत अनासक्त थे, वो सोच रहे थे मारो भी रखो भी, जो इच्छा तुम्हार, आप जो मुझे रखना चाहते हो मारना चाहते हो वो तुम्हारा इच्छा है, अपना भजन में व्यस्त थे। लेकिन ये जो परिपक्व भक्त नहीं होते हैं उनको डर लगता है, कभी कभी कुछ भक्तों के हृदय में डर लगता है कि मेरा क्या होगा, जैसे विचार आया मतलब अभी भी कोई भौतिक चीज़ के प्रति हम आ सकते हैं, वी आर स्टिल मेटेरियलिस्टिक। तो ये देवता लोग भौतिक स्तर के भक्त होने की वजह से उनको हृदय में डर लगने लगा। भगवान जो है भक्त वत्सल है, वो किसी भी प्रकार का भक्त भी क्यों ना हो उनको अभय प्रदान करना ये स्वभाव है। तो हिरण्यकश्यपु का इस प्रकार का आक्रांत की वजह से सभी लोग डरे हुए थे, मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा। तो भगवान ने ऐसा गर्जना किया जिनकी प्रार्थना सुन के, तो केवल उनको मतलब भी नहीं मालूम था क्या बोले कुछ बोले, केवल आवाज़ सुनते ही वो शब्द सुनते ही उनके हृदय में अभय को उनको अनुभव हुआ। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि दिव्य वाणी होता है, दिव्य शब्द होता है, उसका जो मतलब अनुवाद ऐसा कुछ होता नहीं है। जो ये शास्त्रों की वाणी है, भगवान की वाणी है, वो शब्द है, शब्द ब्रह्म है। तो केवल वो शब्द सुनते ही भले उसका मतलब समझे ना समझे, तो उसके पहले ही वो लोग अशांत हो गए। इसलिए कहा गया है कि भक्तानाम अभयंकरी, भक्तानाम अभयंकरी मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत डरा हुआ अवस्था में भगवान का शरण लेने के लिए कभी मंदिर में आते, किसी का कुछ हुआ किसी का ऐसा हुआ, डरे हुए अवस्था में भगवान का शरण लेते। जैसे मंदिर में आते तो प्रवचन में बैठते हैं, कीर्तन में सुनते हैं, वो समय इधर क्या हो रहा है इसका मतलब क्या है कुछ समझ में नहीं आता, भले ही नहीं समझ में आता है केवल वो दिव्य वाणी का श्रवण मात्र से हृदय में एक प्रकार का शांति का अनुभव होता है। तो ये प्रत्यक्ष हमने, मैंने कुछ दिन पहले जब वापी में गए थे तो उधर एक ब्राज़ील से एक लेडी आई थी, उनको ना हिंदी समझ में आता था ना इंग्लिश बराबर आता था, तो उधर प्रवचन चल रहा था हिंदी में, कभी कभी गुजराती में चलता था यशोमचंद्र का, तो एकदम ऐसे आविष्ट होकर देख रही थी, ध्यान से सुन रही थी। तो बाद में मैंने उनसे पूछा कि आपको सब समझ में आता था, तो उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आता था लेकिन बहुत अच्छा लगता था। ये पहला दिन का अनुभव है। दूसरा दिन के ऐसे बातचीत में मैंने पूछा कि आप क्या करते हो क्या है, ऐसे बातचीत करते करते मैंने पूछा आपको समझ में नहीं आता है लेकिन फिर भी आप कैसे सुनते हो। तो उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आता है लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है। तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया मैं। तो बाद में उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि आप इधर क्यों आए हैं भारत में, मैं शांति को ढूंढने के लिए आई हूँ। मैंने कहा आपका शांति का खोज समाप्त हुआ कि नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि बहुत शांत लगा, दो दिन से मुझे अच्छा लग रहा है। तो उनको कोई शब्द का कोई मतलब नहीं मालूम था, शी डजंट नो द मीनिंग व्हाट इज बीइंग स्पोकन, लेकिन फिर भी केवल शब्दों का श्रवण मात्र से, अर्थ भी नहीं मालूम केवल श्रवण मात्र से क्या हुआ, अभयंकरी। तो भगवान की जो वाणी है अभयंकरी है। हमेशा मैं भक्तों की इस बात को कहता हूँ, कभी कभी भक्त लोग डर जाते हैं कोई अवस्था को देख के, कोई परिस्थिति को देख के, या उनके भूतपूर्व संस्कारों की वजह से उनको डर लगता है मेरा क्या होगा, कौन देखभाल करेगा, ऐसा हो जाएगा तो मेरा पोस्ट छूट जाएगा तो क्या होगा, इस प्रकार का डर उत्पन्न होता है। उन्हीं भक्तों को होता है जो भगवान की वाणी को श्रवण नहीं करते, जो शास्त्रों को पढ़ते नहीं। भगवान की वाणी को जैसे श्रवण करेंगे, भक्तानाम अभयंकरी, ये साधु नाम अभयंकरी। इसलिए ये श्लोक में 24वें श्लोक में कहा गया है कि ककुबह सारे डायरेक्शन में से पासिंग टू वाइब्रेट सन्निधान्ति। पूरा इतना भयानक सा आवाज़ था, लेकिन वो आवाज़ भयानक ज़रूर था भौतिकवादियों के लिए, लेकिन ये भक्तों को अभयंकर करने वाला था। जैसे आगे भी ये हिरण्यकश्यपु को वध करने के, जब नरसिंहदेव प्रकट हुए, जब नरसिंहदेव प्रकट हुए तो क्या हुआ, इतना भयानक सा आवाज़ आया, तो पहली बार हिरण्यकश्यपु को मालूम पड़ा कि डर क्या है। आज तक उनको एक चीज़ नहीं मालूम था हिरण्यकश्यपु को, क्या डर क्या चीज़ है वो मालूम नहीं था। लेकिन प्रहलाद हिरण्यकश्यपु को इतना डराने के लिए प्रयास किया, कभी डरे नहीं। जब नरसिंहदेव प्रकट हुए तो एकदम आनंदित हो रहे थे, उनके पिताजी इतना शक्तिशाली होने पर भी वो डरे हुए अवस्था में थे, लेकिन साथ साथ में अन्य देवता लोग भी हिरण्यकश्यपु को देख के डरने लगे, और प्रहलाद एक ही व्यक्ति थे तो अभयंकरी। तो इसलिए भक्ता नाम अभयंकरी, एक नरसिंहदेव का लीला का इधर चर्चा हो रहा है, आगे होगा, तो इसलिए उसका इंट्रोडक्शन इसी श्लोक में किया है, क्योंकि ये जो वाणी जो उच्चारण कर रहे हैं, ये जो भयानक सा शब्द आया वो भगवान का ही अच्युतम अच्युत का शब्द आया। जैसे हम पिछले दो क्लास से पहले हम ये अच्युत शब्द का श्रवण कर रहे थे, अच्युत मतलब वो व्यक्ति भगवान को अच्युत इसलिए समझ, क्योंकि वो अपनी स्वरूप से कभी तुच्छ नहीं होते। अपना स्वरूप क्या है, भगवान, यानी भगवान की स्थिति, उनकी जो दिव्य अवस्था है, सबको नियंता के रूप में, सबका भोक्ता के रूप में, ये जो स्थिति है उनका स्वरूप है। भगवान का निजी स्वरूप है क्या है, वो भोक्ता, और वो एकमात्र नियंता है। लेकिन भगवान, ये अच्युत का दूसरा शब्द क्या है, दूसरा मतलब क्या है, अपना जो निजी स्वभाव है, एक है स्वरूप है, उनका स्वभाव है। जैसे किसी का रूप है, रूप भले कितना भी सुंदर दिखता हो, थोड़ा नज़दीक जाएंगे तो उनका स्वभाव मालूम पड़ता है, ये तो बहुत कठोर व्यक्ति है। तो ऐसे भगवान का एक बहिरंग एक रूप है, और उसके पीछे एक स्वभाव है। तो भगवान कभी कभी अपना स्वरूप को त्याग कर देते हैं, स्वरूप से तुच्छ हो जाते हैं, किसके लिए, अपना स्वभाव को बना के रखने के लिए। तो क्या है वो स्वभाव भगवान का, कि वो भक्तवत्सला, भक्तों को संरक्षण प्रदान करती है, भगवान का स्वभाव है, इट इज़ द नेचर ऑफ द लॉर्ड। इसलिए हम देखते हैं कि अर्जुन जब भगवान को संबोधित किया कि आप ये दोनों रथों को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ, सेनयोर उभयोर मध्ये रतन स्थापय में अच्युता, उन्होंने अच्युत करके संबोधित किया। उस श्लोक की टीका में श्री विश्वनाथ ठाकुर रचना करते हैं कि अर्जुन ने भगवान को अच्युत करके क्यों संबोधित किया, क्योंकि अर्जुन को मालूम था कि भगवान अभी च्युत हो चुके हैं, मतलब अभी मेरा ड्राइवर बन गया है। लेकिन भले ही अपना स्वरूप को त्याग करते हैं, उनका स्वभाव को त्याग नहीं करते। अपने स्वभाव को बना के रखने के लिए, यानी मेरी आज्ञा को पालन करने के लिए, अपना जो स्वरूप है वो त्याग करने के लिए तैयार है। तो उसी प्रकार इधर हम देखिए, सत्यम विदातुम निजमृत्युवासितुम, यानी प्रहलाद ने कहा उनकी वाणी को सत्य करने के लिए, अपना जो स्वभाव है, अपना जो स्वरूप है भगवान का, सत्य संकल्प सत्य कामा, जो बोलेंगे वो सत्य है, उसको भी उन्होंने त्याग किया, वो स्वरूप को त्याग करके वो स्वभाव को बना के रखा। ये बात हमको ये प्रतीत होता है। तो इस प्रकार भगवान की जो स्वभाव है, जो जानता है, वो निश्चित रूप में अभयंकर हो जाता है। केवल देवता लोग जो है वो भगवान का स्वरूप जानते हैं कि वो ईश्वर है, भोक्ता है, लेकिन जो भगवान का स्वभाव को जानता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण इतने दयालु है, वो हर परिस्थिति में मुझे रक्षा करेंगे, मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इस प्रकार जो विचार बना के रखता है वो अस्तित्व में शुद्ध भक्त माना जाता है। चलिए, तो आवाज़ आया अचानक से, तो लेकिन है क्या था, उसका मतलब क्या था, व्हाट वॉज द मीनिंग ऑफ दिस, ये दो श्लोक में बताया गया है। सबसे पहला है माँ भिष्ठा, पहले आवाज़ आया लेकिन उनको सुने नहीं थे क्या मतलब है, तो तब भगवान ने स्पष्ट रूप में ये सुनाया सारे देवताओं को। उन्हें क्या कहा, माँ भिष्ठा आप डरो मत, विबुध श्रेष्ठ आप सारे जितने भी विबुध यानी पंडित होते हैं, वो सारे पंडितों में आप श्रेष्ठ हो। देवता लोग सच में वो ज्ञान रखते हैं, क्यों हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान रहता है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन उनको भगवान का स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता है कि वो सर्वशक्तिशाली है और मैं जब कोई डरावो अवस्था में रहता हूँ उनका शरण लेना चाहिए। तो श्रीपाद रामानंद संप्रदाय में एक आचार्य आए हैं तो उन्होंने कहा कि भगवत संबंधित ज्ञान अनेकों प्रकार का है, लेकिन उसमें से जो शरणागति स्वीकार करने का जो विधि का जो ज्ञान है वो शिरोमणि है, सार शिरोमणि है। यानी दूसरे शब्दों में वो कहते हैं कि जब तक वो कितना भी प्रकार का अध्ययन करो, भगवत संबंधित आत्म संबंधित ज्ञान को प्राप्त करो, लेकिन शरणागति का विधि नहीं जानते हो तो कोई फायदा नहीं। दूसरे शब्दों में वो कहते हैं अगर वो मूर्ख है, वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन भगवान का शरणागति का विधि जानता है, वो सारे पंडितों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए इधर ये बात कहा गया है ये विबुधा श्रेष्ठा, क्योंकि सारे पंडितों में वो आप श्रेष्ठ हो, क्योंकि आप शरण लेने की विधि जानते हो। शरण लेने की विधि, दो हाथों को उठाते भगवान को पुकारने की जो विधि है वो जानते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बड़े बड़े पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, लेकिन उनको डर लगता है, अनेकों चूसन से डर रहता है कि कहीं मेरा कोई अपमान ना कर दे, कहीं मेरा अनादर ना हो जाए, कहीं मेरा पांडित्य चले ना जाए, तो ऐसे अनेकों प्रकार के डर उनके हृदय में रहता है। लेकिन जो शरण लिया हुआ रहता है, भले उनके पास कोई पांडित्य नहीं है, उनको कोई डर नहीं, वो निश्चिंत रहता है, विबुधाश्रय। बाद में उन्होंने कहा माँ भीष्टा आप डरो मत, आप सब मेरा शरण लिए हो, इसलिए आप सारे विद्वानों में श्रेष्ठ हो। सर्वेशम भद्रमस्तु वह, द भगवान ने कहा सर्वेशम सारे लोगों को भद्र हो, आशीर्वाद है मेरा कि आप सबका कल्याण हो। भद्रम मतलब भद्रमस्तु, सारे श्रेय यश आपको प्राप्त हो, सर्वेशम जितने भी लोग बैठे हैं सबको भद्रमस्तु। तो आपको देना चाहिए, देखना चाहिए इधर भगवान की वाणी जो है सबको सुनाई पड़ रहा था, लेकिन जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य होना था उस समय भी इसी प्रकार का स्थिति था। आपको मालूम है कि दरी जो है वो गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई, तो ब्रह्मा जी ने ये गाय का सारा निवेदन को सुना कि किस प्रकार अक्रांत था भूरी हारेणा, ये भूलोक में अक्रांत मचा हुआ था बेचारा, ये बिचारी ये जो गाय है माँ का माँ है, धरती माँ है, गाय का रूप धारण करके जब गई आँखों में आंसू था। तो ब्रह्मा जी इस अवस्था को देख के वो सोचने लगे अरे ये तो उनकी रक्षा करना है, तो रक्षा करने का कार्य तो मेरा नहीं है, विष्णु का है, इसलिए विष्णु के पास जाएंगे। लेकिन उनका रक्षा तभी होगा जब शिवजी साथ में रहेंगे, क्योंकि इधर असुरों को वध करना है, नाश का कार्य शिवजी करते हैं, इसलिए सत्रेनेनस यानी त्रिनयनस मतलब शिवजी। तो ब्रह्मा जी शिवजी के पास गए और अन्य देवताओं को साथ में लेके गाय को लेके विष्णु के क्षीरम तीर पयो निधे, तीरम क्षीर पयो निधे, तो ये जो पयो निधि पयो तीर मानी क्षीर सागर के तट पे पहुँचे, पहुँच के वो पुरुष सूक्त का उच्चारण किए, जैसे उच्चारण किए जैसे इधर देवता लोग भी ऐसे उच्चारण किए, लेकिन वो पूरा तीर तक पहुँचे नहीं, क्योंकि कहाँ पहुँचेंगे, जैसे लाल गोविंद प्रभु प्रवचन दे रहे थे उसमें, तो वो लोग जहाँ थे उधर से ही प्रार्थना करने लगे, क्योंकि कहाँ जाएंगे, जाएंगे तो हिरण्यकश्यप पकड़ लेंगे, लेकिन वो टाइम में पता नहीं उधर के लोग इतना हिरण्यकश्यप जैसे सक्षम असुर नहीं थे लगता है। ये सारे देवता लोग चल चल के गए, कहाँ गए, वो क्षीर सागर के तट में गए, उधर सब लोग प्रार्थना करने लगे। तब गिरम समाधो गगने समीरितम, ये श्लोक के द्वारा सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि आकाश में आवाज़ सुनाई पड़ा, लेकिन ये आवाज़ केवल ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा, इधर क्या था, ये भगवान की जो आवाज़ है सारे लोगों को सुनाई पड़ा, लेकिन उधर क्या था, वो प्रसंग में जो कृष्ण का प्राकृतिक लीला में केवल ब्रह्मा जी के हृदय में वो दिव्य ज्ञान को उन्होंने प्रकाशित किया। तो इधर क्या किया भगवान ने, वो सारे लोगों को, सारे जितने भी थे उन सबको प्रकाशित किया। तो भले ही एक व्यक्ति के हृदय में प्रकाशित करे या सारे लोगों को भगवान की वाणी सुनाए, लेकिन अंततः आचार्यों का कहना ये है दिव्यम ज्ञानम ददाति, इसको दीक्षा कहते हैं। दीक्षा मतलब हृदय में दिव्य ज्ञान को प्रदान करना, इसको दीक्षा कहा जाता है। इसलिए भागवत में शुरुआत में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा गया है, उनके हृदय में ब्रह्म यानी वेद को प्रकाशित किया भगवान ने, इसलिए ब्रह्मा जी सबसे पहले ब्राह्मण हैं। तो इधर भी सारे जितने भी देवता हैं उन सबको शिक्षा प्रदान कर रहे भगवान, अभय को अवस्था प्रदान कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, सर्वम भद्रमस्तु, ये आशीर्वाद देना जो है ये स्वभाव है भगवान का, इसलिए उनका हाथ जो है हमेशा ऐसा रहता है, एक ऐसा होता है एक ऐसा हाथ होता है। ये दो प्रकार के मुद्राएं भगवान के, ये जो है वरद मुद्रा कहा जाता है, वरद मतलब लो, जितना चाहे उतना लो। दूसरा ये क्या है, अभय मुद्रा। तो जो जो विग्रह के हाथ ऐसे रहते हैं इसका मतलब क्या है, वो चिंता मत करो, आई एम देयर। और जो जो विग्रहों के हाथ ऐसे रहते हैं इसका मतलब क्या है, वरदा, मैं जो चाहे वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तो अभी ये देवताओं को ये दोनों प्रकार की चीज़ चाहिए, उनको अभय भी चाहिए और वरदान भी चाहिए। इससे दक्षिण भारत में एक कांचीपुरम में एक विग्रह है जिनका नाम है वरदराज, उनका हाथ भी ऐसे ही, इट इज़ लाइक दैट। तो बोथ आर देयर, अभय अवस्था और वरद मुद्रा। तो भद्रमस्तु, सर्वेशाम भद्रमस्तु, वास्तविक जो भद्र है, फॉर्चून है, वो भगवान ही दे सकते हैं। तूने कहा बाद में मत दर्शनम ही भूतानाम, तूने कहा कि मेरा दर्शन करो, मत दर्शनम द सीइंग ऑफ मी। तो इसके ऊपर पूरा आधारित होकर परपोट देते हैं प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इन कंसिडरिंग द वर्ड मत दर्शनम सीइंग मी विच इज मेंशन इन दिस वर्स, वन शुड नोट दैट भगवद्गीता इन लॉर्ड सेज भक्तियां मामी जानाती। तो इधर भगवान कहते हैं कि मत दर्शनम ही भूतानाम, जैसे तीसरा लाइन में है, तो मत दर्शनम ही भूतानाम, तो सबको कहते हैं कि आप सब मेरा दर्शन करो। तो भगवान तो उनको दिखाई नहीं पड़ रहे थे, तो भगवान का दर्शन जो है ये देवता लोग कैसे कर रहे थे, ये दर्शन प्रार्थना के द्वारा कर रहे थे। जब प्रार्थना कर रहे थे भगवान ने उनका श्रवण किया, तब भगवान ने कुछ शब्दों को उच्चारण किया तो देवता लोग वो श्रवण कर रहे थे। पहले देवता लोगों ने कीर्तन किया, उसके बाद भगवान की वाणी को श्रवण किया। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रवण और कीर्तन के द्वारा भगवान का दर्शन हो सकता है। हमारा जो विधि है, हम आँखों के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं करते, हम कानों के द्वारा भगवान का दर्शन करते हैं। तो क्यों, कि भगवान के संबंधित हर चीज़ एब्सोल्यूट है, हर चीज़ दिव्य है। ये परपोट में प्रभुपाद जी एक बहुत पावरफुल लाइन लिखते हैं जो आखिरी लाइन है, वो कहते हैं वन मस्ट रियलाइज दिस पोजिशन एंड देन वन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट नेचर ऑफ लॉर्ड्स एक्टिविटीज। जब तक इस श्लोक में लिखा गया सिद्धांत को नहीं समझता है, तब तक भगवान की दिव्यता, भक्ति की दिव्यता, भक्त का दिव्यता को नहीं पहचानता है। क्या है, मैं भगवान को कानों के द्वारा दर्शन करूँगा, भगवान को अपनी हाथों के द्वारा दर्शन करूँगा। अरे आप हाथों के द्वारा भगवान का दर्शन कैसे कर सकते हो, आप इन हाथों के द्वारा करोर हरे मंदिर मर्जनादिशु, आप इन हाथों के द्वारा मंदिर साफ करेंगे तो आप नहीं बोलेंगे अरे मंदिर का दर्शन भगवान का दर्शन नहीं है। नहीं, भगवान का मंदिर का साफ करना भी भगवान का दर्शन है, भगवान की कथा का श्रवण करना भी भगवान का दर्शन है, और इन पैरों के द्वारा भगवान के मंदिर में चलते चलते जाना भी भगवान का दर्शन है। इसलिए एक अंधा व्यक्ति भी भगवान का दर्शन कर सकता है, जैसे विल्लो मंगल ठाकुर, वो कौन थे, ही वाज ब्लाइंड, वो अपनी आँखों को हेयर पिन से फोड़ दिए थे क्योंकि वो सोचे थे कि मेरा आँख इतना दुष्ट है, क्या फ़ायदे इन आँखों का जो एक भौतिक माया के प्रति आकृष्ट हो रहा है। तो ऐसे विल्लो मंगल ठाकुर भगवान का दर्शन किया, कैसे दर्शन किए, नहीं तो कृष्ण करुणामृत में वो ऐसा राइट रचना करते हैं विल्लो मंगल ठाकुर कृष्ण करुणामृत को कि ऐसे प्रत्यक्ष किसी चीज़ को देख रहे, जैसे मान लीजिए आप कोई पिक्चर देख रहे हैं, कोई घटना देख रहे हैं, देखते देखते आप लिख रहे हैं। तो उसी प्रकार विल्लो मंगल ठाकुर भगवान की लीलाओं को ऐसे लिखते हैं कि वो देखते देखते लिख रहा हो, उसी एकदम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस मतलब हो रहा है मैं लिख रहा हूँ ऐसा लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, विल्लो मंगल ठाकुर के पास कोई आँख नहीं था, लेकिन वो लिख रहे थे। क्यों लिख पा रहे थे? क्योंकि वो सारा जो भगवान की लाए उनके हृदय में अनुभूति हो रहा था। भगवान का दर्शन करना मतलब भगवान को अनुभव करना, टू एक्सपीरियंस कृष्णा। तो वो अनुभव कैसे होगा? ये नवदा भक्ति के द्वारा होगा। क्या है वो नवदा भक्ति? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पदसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति में दर्शनम करके कोई चीज़ सुना है आपने? नहीं है, दर्शनम नहीं है। देखिए नवदा भक्ति में दर्शनम के अलावा सारे चीज़ें हैं। दूसरे शब्दों में श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि मद अनुभवत इति भावः। वो इसके श्लोकों के जो आचार्यों की टीका को देख रहा था, चलो एक एक लाइन दिए, तो मैंने सीधा विश्वनाथ ठाकुर का देखा, तो उन्होंने कहा कि इधर मद दर्शनम मतलब मद मेरा अनुभव करना, इधर मद दर्शनम लिखा है। इसके प्रसंग में श्री बक्शीनाथ ठाकुर का बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार वो भागवतम क्लास दे रहे थे, तो भागवतम क्लास में बहुत सारे सन्यासी वगैरह बैठे थे, और क्लास देते देते क्या हुआ, जैसे क्लास चल रहा था वैसे वो प्रांगण होता है उधर चल रहा था, इधर मेन ऑल्टर था और पट बंद था, और जैसे कुछ सन्यासी बैठे थे उनको उन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया था। तो विश्वनाथ ठाकुर क्लास दे रहे थे, बीच में जैसे वो पट खुला तो पुजारी पूजा करने लगे, सब लोग ध्यान से विश्वनाथ ठाकुर श्रवण कर रहे थे, लेकिन चार पांच सन्यासी शिष्य बहुत वरिष्ठ शिष्य थे, वो उठ के क्लास से उठ के वो गए, भगवान का बहुत प्रेम से दर्शन किए और प्रणाम किए, कुछ प्रार्थना करके वापस आके क्लास में बैठ गए। तो विश्वनाथ ठाकुर बहुत गुस्से से उन्होंने कहा, हो गया आपका दर्शन, यू हैव सीन कृष्णा? तो घबरा गए, क्योंकि वो तो सिंह गुरु है, भले कितने बड़े सन्यासी शिष्य थे वो लोग भी घबरा जाते थे। तो उन्होंने कहा कि ये आपने जो किया है, इट इज़ ओनली द एक्सरसाइज ऑफ आइस, ये आँखों का एक एक्सरसाइज को क्या बोलेंगे, मसाज, कसरत मात्र है, व्यायाम, ये आँखों का व्यायाम मात्र है, कसरत मात्र है, इसके अंदर आपका कोई आध्यात्मिकता नहीं, इट इज जस्ट एक्सरसाइज फॉर योर आइज। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त करना चाहिए उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, भगवान कौन है वो वर्णन कर रहा हूँ, तो आप जाके देख क्या, किसको देखे हो आप, कैसे देखे हो, क्या इन भौतिक आँखों के द्वारा दिव्य स्वरूप में भगवान सच्चिदानंद भगवान का दर्शन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, यू कैन नॉट डू दैट, ये सहजीय प्रवृत्ति है। शिला सनातन गोस्वामी पाद वो दामोदराष्टक की टीका में, दिग्दर्शन टीका में इस बात को लिखते हैं, ये सहजी लोग इस बात को सोचते हैं, जहाँ इद्यक्ष दृश्य, आपको इस श्लोक में आता है ना, क्या पूरा श्लोक तो ध्यान में नहीं आ रहा है, इति दिक्ष्व लीलाभिर इदंत्य मुकाम भोजम अत्यंत नीलेर वृत्तम कुंटेलेर स्निग्ध रक्तेश्च गोप्या वृत्त बाद में जो भी है वो श्लोक में इद्यक्ष दृश्य। तो कहते हैं कि सनातन गोस्वामी पाद इधर सत्यव्रत मुनि वो अपनी दिव्य आँखों को भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी दिव्य आँखों को आप दर्शन दीजिए, ये प्रार्थना नहीं कर रहे कि आप, मैं इन आँखों के द्वारा मैं भगवान का दर्शन नहीं करूँगा। सहज ये लोग सोचते हैं कि मैं ये भौतिक आँखों के द्वारा ही भगवान का दर्शन कर सकता हूँ, वो सोचते हैं कि भक्ति करते करते मेरा शरीर दिव्य हो गया, सच्चिदानंद हो गया, तो इसलिए मैं एक गोपी का वेश धारण कर सकता हूँ। तो पुरुष लोग भी गोपी का वेश धारण करते हैं, तो सोचते हैं कि ये जड़ तत्व से बना हुआ जो चीज़ है, कफ पित्त वायु बना हुआ, वो सच्चिदानंद हो जाता अपने आप, नहीं। तो इद्याक्ष दृश्य मतलब क्या है, अपने हृदय की आंखों के द्वारा संत सदैव हृदयेश विलोकयंती, उस बात को सूचित कर रहा है। तो ये बड़ा प्रसिद्ध बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मद दर्शन ही भूतानाम सर्वश्रेयोपपद्यते मतलब क्या है कि आप सबको श्रेय प्राप्त होगा। कैसे श्रेय प्राप्त होगा? ये नवदा भक्ति को पालन करने से श्रेय प्राप्त होगा, क्योंकि ये नवदा भक्ति के द्वारा मेरा अनुभव होता है। यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्ण एवरीवेयर, हर समय कृष्ण का दर्शन प्राप्त होता है। तो दर्शन मतलब इधर अनुभव, ये समझना चाहिए, क्योंकि उधर भगवान ने इन लोगों को दर्शन नहीं दिया, क्योंकि वो तो सस्पेंस रखना था ना हिरण्यकश्यपु हिरण्यकश्यपु वध करने के लिए नरसिंहदेव का, कि वो फाउंड ये बड़ा अद्भुत रूप है, रूपम अद्भुतम अद्भुतम अदृश्यम, आज तक जो नहीं देखा ऐसा रूप को भगवान ने प्रकाशित किया, इतना आता कि लक्ष्मी जी भी वो रूप को नहीं देखा ऐसा वर्णन आता है। बड़ा बड़ा गहरा सिद्धांत है कि ऐसा कैसे ये रूप भगवान का शाश्वत है तो लक्ष्मी जी भी क्यों नहीं देखा है, वो बड़ा विचित्र है। लेकिन फिर भी सारे जगत को तो ये रूप दिखाई नहीं था नरसिंहदेव का, अगर नरसिंहदेव का रूप दिखा देते सारे देवताओं को तो हिरण्यकश्यपु को मालूम पड़ जाता, अरे ऐसा कुछ रूप है कि अब कुछ और वरदान मांग लेता मैं वो सस्पेंस रखे होंगे कोई भी कारण की वजह से। जो भी है भगवान ने अपने रूप को नहीं दिखाया लेकिन सभी लोगों को कहा कि आप मेरा दर्शन करो, मेरा अनुभव करो। कैसे अनुभव करो? नवदा भक्ति के द्वारा अनुभव करो। आगे ये वाला श्लोक है दूसरा, 26वां श्लोक है, 3-6 लाइन में ने कहा ज्ञातम एतस्य दुरात्म्यम। उन्होंने सारे लोगों का मैं जानता हूँ ज्ञातम एतस्य दुरात्म्यम, ये हिरण्यकश्यपु का जितना ये दुरात्म्यम, दुरात्म्यम मतलब ये उनके जो कार्य है ये बड़ा दुष्कर कार्य, ये उत्पात मचाने वाला कार्य है मैं जानता हूँ। तो वही बात जब ये ब्रह्मा जी और अन्य देवता लोग गए थे कृष्ण का प्राकट्य के पहले, तो वो टाइम में भी भगवान ने ब्रह्मा जी को इस बात को कहा कि मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ कि ये सब बड़ा क्रांत हो रहा है। तो उसी प्रकार भगवान ने कहा मैं सब जानता हूँ, आई नो दिस। तो ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, कई भक्त लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, भगवान कुछ क्यों नहीं करते हो, आप जानते हो कि नहीं? भगवान सब चीज़ जानते हैं, ही नोज एवरीथिंग, क्योंकि भगवान कौन है, क्यों है, स्वराट है। तो भगवान जानने के बाद भी वो आपके साथ इस प्रकार क्यों सहायता करने के लिए आज नहीं आ रहे, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है बहुत तकलीफ सह रहा है, कोई पढ़ाई करने में कोई नहीं आ रहा, तो टीचर जानती है बड़ा तकलीफ में है लेकिन सहायता करने के लिए नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जब तक वो तकलीफ को सहता नहीं है तब तक जो है वो जो टीचर आके सहायता जब देती है वो सहायता को सीरियसली नहीं लेता है। ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मैंने एक बार पूछा कि भगवान को मालूम नहीं है क्या भक्तों का तकलीफ, वो तुरंत आके क्यों नहीं करते? जैसे इस श्लोक में लास्ट लाइन में लिखा है कालम तावत प्रतीक्षता, आप इंतज़ार करो। तो वो इंतज़ार क्यों कराया? क्योंकि वो इंतज़ार में बहुत महत्वपूर्ण अनुभूतियाँ होती है। ये तकलीफ़ में जो अनुभूतियाँ होती है वो सुख में अनुभूति नहीं होता है। एक्चुअली स्पिरिचुअल रियलाइजेशन जो है आध्यात्मिक अनुभव वो सुख में नहीं होता है। जब आपका पूरा फर्स्ट क्लास चल रहा है, आप पूछो कैसे है, एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया चल रहा है, एकदम सब सेट सेट है, तो वो टाइम में आध्यात्मिक अनुभव नहीं होते। जब दुख आता है वो टाइम में अनुभव ज़्यादा होता है। तो भगवान जो है इसलिए प्रतीक्षता ये शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि वो प्रतीक्षा में अनुभव ज़्यादा होता है, यू गॉट मोर एक्सपीरियंसेस इन मिस। तो प्रभुपाद जी इसलिए तकलीफ़ों को सहते हुए, क्योंकि वो टाइम में जो प्रभुपाद जी का अनुभव को श्रवण करने के द्वारा हमको भी अनुभव होता है और हर चीज़ एकदम व्यवस्थित है, सब कुछ है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, तो वेर आर रियलाइजेशंस। जैसे एक स्कूल स्टूडेंट एक क्लास में रोज़ बच्चा जाता है, स्कूल जाता है आ रहा है, तो हर रोज़ एकदम मज़े से आ रहा है जा रहा है आ रहा है, लेकिन अस्तित्व में वो बच्चे का क्षमता जो है वो कैसे मालूम होगा? वो पढ़ाई कब करेगा? जब परीक्षा का समय आएगा तभी उसका वास्तविक ज्ञान का परीक्षा है। वो ही नहीं, वो पढ़ाई भी उसी समय करता है, परीक्षा के लिए करता है। उसी प्रकार ये जो भयानक आक्रांत होता है हिरण्यकश्यपु जैसा, सारे देवता लोगों को उन्होंने भगवान ने कहा आप इंतज़ार करो वेट, और साथ साथ में भगवान का जो वाणी है बाद में जो आने वाला है उनका कृपा है उसका वास्तविक वैल्यू भी तभी होगा। तो क्या तो मैं जानता हूँ दैत्या बार सदत यत कहते हैं कि दैत्य अपस्य ये जो बड़ा दैत्य राक्षस जो हिरण्यकश्यपु यत तस्य शांतिम, वो कहते हैं कि तस्य शांतिम करिष्यामि, मैं उनको शांत कर दूंगा आप चिंता मत करो, लेकिन थोड़ा समय की इंतज़ार है। तो इस प्रसंग में आप जानते हो कि तत्तेन कंपना सुसमीक्षमाणो ವನ್ ಜಾನಮೇವಾತ್ಮಕಿತಂ ವಿಪಾಕಂ ಹೃದ್ವಾಗುಬಿರ್ವಿಧಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಜೀವೇ ತುಜ ಮುಕ್ತಿ ಪದೇ ಸದಾಯವಾತ್. ಏ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಭೀ ಯೇ ಶಬ್ದ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ ತತ್ತೇನು ಕಂಪಾನ್ ಸುಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಇಂತಜಾರ್ ಕರೋ ಉಸಿ ಕೋ ಕಾಲಂ ತಾವತ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷತ ಈ ಪ್ರತೀಕ್ಷತ ಔರ್ ಸುಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಯೇ ದೋನೋ ಏಕ್ ಹೀ ಹೈ ತೋ ಹಮಕೋ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಕೃಪಾ ಕಾ ಇಂತಜಾರ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ ತೋ ಯೇ ಭಕ್ತೋಂ ಕಾ ಜೀವನ್ ಕಾ ಶೈಲಿ ಹೈ ವೋ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ರೇ ಅಗರ್ ಏಕ್ ಲೈನ್ ಮೇ ಬತಾಯೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿವೋಟ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ತೋ ಉನ್ಕೋ ಏಕ್ ಹೀ ಚೀಜ್ ಕಾ ಇಂತಜಾರ್ ಕರ್ ರೇ ಕಿಸ್ ಕಾ ಇಂತಜಾರ್ ಕರ್ ರೇ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಕೃಪಾ ಕ್ರಪ್ ಹೋಗಾ ತೋ ಇಂತಜಾರ್ ಮೇ ಪೂರಾ ಜೀವನ್ ಬಿತಾ ಯೇ ಹಮಕೋ ಸೀಖನಾ ಚಾಹಿಯೇ ತೋ ಇಸ್ಲೇ ಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ ಸಾರೇ ದೇವತಾಓಂ ಕೋ ಕಾಲಂ ತಾವತ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷತಃ ಕುಚ್ ಸಮಯ ಮೇ ಪ್ರಕಟ್ ಹೋಂಗಾ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾ ಕರುಂಗಾ ತಸ್ ಶಾಂತಿಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಅಪ್ನಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಮತ್ಲಬ್ ಮೇ ಕರುಂಗಾ ಆಪ್ ಉಸ್ಕಾ ಚಿಂತಾ ಮತ್ ಕರೋ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಐಸಾ ನೇ ಕಿ ಠೀಕ್ ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಕರೆಂಗೆ ಐಸಾ ನೇ ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಬತಾ ರೇ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ದ ದೇವತಾಸ್ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ದತ್ತೇ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಮೇ ಸ್ವಯಂ ಕರುಂಗಾ ಐಸೆ ಭಗವಾನ್ ಕೇತೆ ವಹಾಮಿ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ದೋನೋ ಏಕೆ ಕೌನ್ಸ ಶ್ಲೋಕೆ ವಹಾಮಿ ಅಹಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ಸತತಂ ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾ ಪರಿಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾ ಉಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮಿ ಅಹಂ ಲೇಕಿನ್ ಉಸ್ಕಾ ಥೋಡಾ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಹೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕಿತನಾ ಲಂಬಾ ಸಮಯ ಹೇ ಆಪ್ ಪೂಛ್ ಸಕ್ತೆ ಹೋ ಕಿತನಾ ಬಹುತ್ ದೇರ್ ಹೋ ಗಯಾ ಹೇ ಇಸ್ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಅಭಿ ಆಪ್ಕಾ ಪರೀಕ್ಷಾಯೇ ಪಾಸ್ ನಹೀ ಹುಯೇ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಯುವರ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ತೋ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಯೇ ಬಡಾ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಮುಖ್ಯತ್ವನ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕ ಹೇ ಇಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಬಹುತ್ ಗಹರಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜೀ ಏಕ್ ಹೀ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಉಪರ್ ಜೋರ್ ದೇತೆ ಹೇ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ದರ್ಶನ್ ಜೊ ಹೇ ಯೇ ನವಧಾ ಭಕ್ತಿ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಮೈ ನೈನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಜಿಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ದರ್ಶನ್ ನಹೀ ಹೇ ಔರ್ ಇದರ ದರ್ಶನ್ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಹೇ ಅನುಭವ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೋ ಇದರ್ ಸಮಾಪ್ತ ಕರೆಂಗೆ ಕೋಯಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೊ ಪೂಛೇ ಎನಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಸ್ ನೈಸ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಇನ್ ಕಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯೇ ಹೇ ಕಿ ಜೊ ಗೋವರ್ಧನ್ ಕೆ ಸಮಯ ಸಾರೇ ಜಿತನೆ ಭೀ ಭಕ್ತ ಥೆ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಸೋಚನೆ ಗಯೇ ಹಮಕೋ ಕೌನ್ ರಕ್ಷಾ ಕರೇಗಾ ತೋ ಸೋಚನೆ ರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಬಾಹೋ ಕರ್ಕೆ ಗಯೇ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಪ್ ಹೀ ಮುಜೆ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೋ ತೋ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಶರಣ ಮೇ ಗಯೇ ಥೇ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ಕೋ ಸಮಝನಾ ಹೇ ಆಚಾರ್ಯೋ ಕೆ ಟೀಕಾ ಸೇ ಸಮಝ ಸಕ್ತೆ ಹೇ ಖಾಸ್ ಕರ್ಕೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಜೀ ಠಾಕುರ್ ಇಸ್ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಏಕ್ ಹೋತಾ ಹೇ ವಿಧಿ ವಿಧಿ ಕೆ ಸ್ತರ ಮೇ ಐಸಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇ ಏಕ್ ಸಭ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋ ಸಾಧಕ ಕೋ ಜಬ್ ತಕ್ಲೀಫ್ ಹೋತಾ ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಶರಣ ಮೇ ಜಾನಾ ಚಾಹಿಯೇ ವಿಧಿ ಕರ್ತೆ ಕರ್ತೆ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಹುಂಚ್ತಾ ಹೇ ಏಕ್ ಸ್ತರ ಮೇ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಅವಸ್ಥಾ ಏ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಅವಸ್ಥಾ ಮೇ ಜೆಸೆ ಯೇ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೋಯಿ ಚಿಂತಾ ನಹೀ ಥಾ ಮಾರೋ ಭೀ ರಾಖೋ ಭೀ ಜೋ ಇಚ್ಛಾ ತುಮಾರ್ ಮೇರಾ ಆಪ್ಕಾ ಭಜನ್ ಕರ್ನಾ ಜೋ ಹೇ ಮೇರಾ ಲೇಕಿನ್ ರಾಗ ಕಿ ಅವಸ್ಥಾ ಮೇ ರಸವರ್ಧನ್ ಕೆ ಲೀ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಕಾರ್ಯ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೇ ತೋ ಉದರ್ ಅಭಿ ತಕ್ ಸಾರೇ ವ್ರಜವಾಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಯಾ ಸೋಚ ರೇ ಥೆ ಇಸ್ಕೋ ಮೇ ಬಾಂಧ ಕೆ ಯಶೋದಾ ಸೋಚ ರೇ ಬಾಂಧ ಕೆ ರಖೂಂಗಿ ಇಸ್ಕೋ ಯೇ ಕರೂಂಗಿ ಉಸ್ಕೋ ಮಾರೂಂಗಿ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಕರ್ ರೇ ಥೆ ಏಕೆ ನೇ ದೇವರ್ ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಲೇಕಿನ್ ಯೇ ಜೋ ಜಿಸ್ಕಾ ಆಪ್ಕೋ ಜಿಸ್ಕೋ ಆಪ್ನೆ ಬಾಂಧನೆ ಕೆ ಲೀ ಪ್ರಯಾಸ ಕ್ಯಾ ಜಿಸ್ಕೋ ಡಾಟಾ ಉಸಿ ಕೆ ಪಾಸ್ ಜಾಕೆ ಶರಣ ಲೇನಾ ತೋ ಏಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ಅನುಭವ ಜೆಸೆ ಮಾನ್ ಲೋ ಕಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ ರಸ ಹೇ ಕಿ ಆಪ್ ಜೊ ಹೇ ಕೋಯಿ ಏಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್ಕೋ ಮಾಲೂಮ್ ನಹೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೇ ಏಕ್ ಬಡಾ ವಿದ್ವಾನ್ ಹೇ ಪಂಡಿತ ಹೇ ಆಪ್ ಏಕ್ ಮಂದಿರ್ ಮೇ ಹೋ ಏಕ್ ನಯಾ ನಯಾ ಆಯ ಭಕ್ತ ಹೇ ವೋ ದಿಖನೆ ಮೇ ಇತನಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿಖಾಯಿ ನಹೀ ಪಡ್ತಾ ಆಪ್ನೆ ಉನ್ಕೋ ಬೋಲಾ ಕಿ ಅರೇ ಕಹಾಂ ಸೆ ಆಯೋ ಲೆಟರ್ ಆಯ ಕಿ ನಹೀ ವೋ ಸಬ್ ಚೀಜ ಬೋಡೋ ಯೇ ಕಿಯಾ ಹಾಂ ಬೋಲಾ
जूनियर के रूप में ट्रीट किया, ठीक है, आप कोई भी सेवा करेंगे, ठीक है, बर्तन मांजो, सब कुछ किया। लेकिन बाद में एक दिन क्या हुआ कि उनको पहचानने वाला कोई भक्त आए, तो उन्हें कहा अरे आप इधर हो, अच्छा आज आप भागवतम क्लास, तो वो भागवतम क्लास देना शुरू किया। तो आप इतना सुंदर क्लास दिया, तो इधर का जो टेम्पल कमांडर है वो थोड़ा सोचने में मैंने क्या करा है उससे। तो एक प्रकार का एक्सपीरियंस है वो, लेकिन नहीं तो वो एक्सपीरियंस हम वर्णन नहीं कर सकते वो क्या है, मैंने क्या कर दिया। तो वो अनुभव भी ये व्रजवासी करते हैं, दे ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस थिंग, दे कृष्ण वॉन्टेड टू गिव दम द एक्सपीरियंस ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। बाद में तुरंत क्या हुआ, तो जैसे सब लोग शरण लिए, गोवर्धन उठाए, उठाने के बाद सारे भक्त लोग सोचते हैं अभी बस ठीक है। बाद में सोचते हैं अरे कृष्ण छोटा सा बालक है, मेरा पुत्र, पता नहीं गोवर्धन को कैसे उठा पाएगा, मैं भी मदद करूंगा। नंद महाराज ने क्या किया, डंडा रखा, हाँ मेरा डंडा उठाएगा। तो तुरंत ये जो रस का आदान प्रदान में, उधर रस का आदान प्रदान श्रेष्ठ होता है, सिद्धांत श्रेष्ठ नहीं होता है। जैसे भगवान ने गोवर्धन पूजा के पहले एक कर्मीमांसा सिद्धांत को पेश किया, वो गलत सिद्धांत है, लेकिन उस सिद्धांत में क्या रस को अनुभव कर रहे भगवान और नंद महाराज को क्या रस को अनुभव करा रहे हैं, अरे मेरा लड़का जो है बड़ा हो गया है, ये बुद्धिमान है, तो ऐसे पहले जैसा नहीं रहा अभी, वो ये अनुभव है पिताजी का कि मेरा लड़का बड़ा होने लगा, बड़े बड़े बातें करने लगा, ये अनुभव करा रहे, और मैं बड़ा लड़का हूँ अभी, पहले जैसा नहीं रहा। ये एक बच्चे को एक अनुभव होता है कि नहीं, पहली बार स्कूटर चलाएगा, पिताजी के पास के बोलेगा देखो अभी स्कूटर चलाने लग गया, माने अभी पहले जैसे बच्चा नहीं रहा। ये जो रस का अनुभव है वो अनुभव करने के लिए, कराने के लिए गलत सिद्धांत को ही बोला जा सकता। तो कृष्ण लीलाओं में, खास करके भागवतम में, खास करके कृष्ण लीला में समझना चाहिए, हर चीज़ को रसवर्धन मात्रम ही, केवल रस का वर्धन करने के लिए भगवान अनेकों कार्य करते हैं। तो ये बात को लेके समझने के लिए प्रयास करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बहुत समय हो गया। हरे कृष्ण ग्रंथराशि भागवतम की।
वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीनाथान्वितां हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा
Hare Hare.
वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च।